चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद, या आप कहें इवोल्यूशन का सिद्धांत 1859 में दिया था। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर पानी के एक छोटे से जीव से लेकर एक पूरी तरह से विकसित इंसान तक के सफर का पूरा ब्लूप्रिंट
हाँ हजारों साल पहले ही भारत में लिखा जा चुका हो।
बिल्कुल, और वो भी सिर्फ हड्डियों के ढांचे का नहीं बल्कि हमारी चेतना का। तो चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। आज की हमारी इस गहराई से चर्चा में हमारे श्रोत हमें दशावतार की प्राचीन कथाओं और मानव चेतना के विकास के बीच के उस गहरे संबंध की तरफ ले जा रहे हैं जो विज्ञान की किताबों से बहुत आगे की बात करता है।
सही कहा। डार्विन का सिद्धांत हमें मुख्य रूप से ये बताता है कि जीवन ने भौतिक रूप से खुद को कैसे बदला, लेकिन हमारी जो स्रोत है ना, वो इशारा करते हैं कि दशावतार की कथाएं महज देवी देवताओं की कहानियां नहीं है।
अच्छा।
हाँ, वे वास्तव में एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विकास का प्रतीकात्मक नक्शा है।
लेकिन एक मिनट, जब हम आधुनिक जीव विज्ञान और इन पुरानी कथाओं को एक साथ रखते हैं तो क्या हम जबरदस्ती कहानियों को विज्ञान के सांचे में फिट करने की कोशिश नहीं कर रहे?
ये सवाल उठना लाजमी है।
मेरा मतलब है, एक तरफ म्यूटेशन और जेनेटिक्स है और दूसरी तरफ अवतारों की कथाएं, ये आपस में तार्किक रूप से कैसे जुड़ते हैं?
यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि प्राचीन सभ्यताओं ने जीवन को कभी भी केवल एक बाहरी या भौतिक घटना के रूप में नहीं देखा। उनका पूरा ध्यान अनुभव और चेतना पर था।
अच्छा, तो नजरिया ही अलग था।
बिल्कुल। इसे इस तरह समझें कि विज्ञान हमें बताता है कि एक जीव का मस्तिष्क कैसे विकसित हुआ, लेकिन ये मिथक हमें बताते हैं कि उस मस्तिष्क के भीतर मन और जागरूकता ने कैसे छलांग लगाई।
ओहो, अब मुझे समझ आ रहा है। मतलब अगर हम बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को शरीर का हार्डवेयर अपग्रेड मान लें, जैसे रीढ़ की हड्डी का सीधा होना, तो क्या दशावतार असल में हमारी चेतना का सॉफ्टवेयर अपग्रेड है?
ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है, एकदम सही। और ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड ना अचानक नहीं हुआ। दशावतार महज 10 कहानियों की सूची नहीं है, ये चेतना के क्रमिक विस्तार की प्रक्रिया है।
तो इसके बजाय कि हम एक एक करके सारे 10 अवतारों को गिनें, आइए इस सॉफ्टवेयर अपग्रेड के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स पर बात करते हैं।
बिल्कुल, वो ज्यादा बेहतर रहेगा।
जैसे शुरुआती अवतार मत्स्य कूर्म वराह, ये सिर्फ पानी से जमीन पर आने की जैविक कहानी तो नहीं बताते होंगे?
असल में वे चेतना के उस प्राथमिक स्तर को दर्शाते हैं जहाँ जीवन को अपना भौतिक आधार मिल रहा था।
हाँ, पानी से जमीन तक का सफर।
सही कहा। लेकिन असली सॉफ्टवेयर शिफ्ट तब आता है जब हम नरसिंह अवतार तक पहुँचते हैं, जो आधा पशु और आधा मानव है।
अरे हाँ, आधा इंसान और आधा शेर।
बिल्कुल। ये केवल एक रूप नहीं है बल्कि ये पशु प्रवृत्ति और मानवीय चेतना के बीच के घर्षण का प्रतीक है। जब तक वो हिंसक पार्श्विक अहंकार टूटता नहीं है ना,
तब तक इंसान पूरी तरह इंसान नहीं बन पाता।
एकदम सही। जब तक वो टूटता नहीं तब तक विशुद्ध बुद्धि का जन्म नहीं हो सकता।
और इसीलिए ठीक इसके बाद वामन अवतार आता है।
सही पकड़े हैं।
जो शारीरिक रूप से भले ही छोटा है लेकिन बौद्धिक और तार्किक रूप से अत्यंत विशाल है। ये दिखाता है कि अब विकास शरीर के आकार का नहीं बल्कि बुद्धि का हो रहा है।
बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि कैसे इवोल्यूशन का फोकस पूरी तरह से शारीरिक से मनोवैज्ञानिक हो जाता है।
हाँ, वो बहुत साफ दिखता है इस कहानी में।
परशुराम की अनियंत्रित आक्रामकता से लेकर राम के सामाजिक और नैतिक संतुलन तक का सफर, और फिर कृष्ण और बुद्धा आते हैं जो प्रेम, पूर्ण आंतरिक जागरूकता और उच्च चेतना के चरम बिंदु हैं।
ये वाकई दिलचस्प है। मतलब पदार्थ से जीवन, जीवन से बुनियादी मन, बुनियादी मन से बुद्धि, और बुद्धि से एक जागृत चेतना।
हाँ बिल्कुल, यही क्रम है।
तो इस पूरी क्रमिक यात्रा का हमारे आज के जीवन में क्या महत्व है?
अगर हम इसे बड़े तस्वीर से जोड़ें तो हम पाएंगे कि इवोल्यूशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो लाखों साल पहले होकर खत्म हो गई। इंसान कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है।
क्या बात कर रही है, मतलब विकास अभी भी चल रहा है।
बिल्कुल। इंसान का हर संघर्ष, हर नई सीख, हर भावनात्मक अनुभव इसी विकास प्रक्रिया का हिस्सा है। हम अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं।
यानी हम खुद एक जीती जागती इवोल्यूशन प्रक्रिया हैं, जो मुझे एक बहुत ही बेचैन करने वाले लेकिन रोमांचक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है।
वो क्या?
हमने देखा कि दशावतार का अंतिम चरण कल्कि है, जो पुराने चक्र के अंत और बिल्कुल नए चक्र की शुरुआत का प्रतीक है। तो अगर हम विकास की इस पूरी टाइमलाइन को देखें तो क्या हमारी आज की आधुनिक चेतना, ये तकनीक और डेटा से घिरी बुद्धि, अब किसी पूरी तरह से नए और अनजान सॉफ्टवेयर अपग्रेड की दहलीज पर खड़ी है?
ये तो बहुत ही गहरा विचार है,
है ना? एक ऐसा विकास चक्र जो शायद जीव विज्ञान और हमारी मौजूदा समझ से भी बहुत परे हो। सोचने वाली बात है।